भाग एक खंड चार। ऊ को ले द्वारा सयाजी ऊबाखे की उपसंपदा का विवरण। लगभग 4:30 बजे हम खीऊ जनपद के इंजिंगबिंग वन परिसर में वेबू सयादा के विहार पहुँचे। पूरी यात्रा भर आकाश घटाटोप था, अतः हम उमस भरी भीषण गर्मी से बच गए तथा विहार पहुँचते समय तरोताज़ा अनुभव कर रहे थे। ऊ सुमन को, जो सयादा के भांजे अथवा भतीजे थे और वहाँ भोजनालय के प्रभारी भिक्षु थे, तत्काल हमने अपने आगमन की सूचना दी तथा यात्रा का कारण बताया। यहाँ हम बता दें कि भतीजा और भांजा दोनों के लिए अंग्रेजी में केवल एक ही शब्द नेफ्यू है, तो वे वेबू सयादा को सूचित करने गए और सयाजी ऊबाखे को और मुझे नए भवन में ठहराया गया। इस भवन को ऊबा टू तथा दोमे नामक चावल मिल मालिकों ने दान में दिया था। उस दिन संध्या में लगभग 7 बजे पाउटो ता सयादा ऊ शासन ने सयाजी को और मुझे श्रामनेर पाली में सामनेर की प्रवज्ञा दी तथा लगभग 8 बजे हम वेबू सयादा को नमन करने गए। हमने अनुरोध किया कि सयादा हमारे उपाध्याय हों तथा वे हमें अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करें। सयादा ने सयाजी ऊबाखे से पूछा कि सप्ताह के किस दिन उनका जन्म हुआ था तथा क्या उन्हें अपना वह नाम याद था जो नाम बचपन में सामनेर की प्रवज्ञा के समय उन्हें दिया गया था। सयाजी ऊबाखे ने कहा कि उनका जन्म सोमवार को हुआ था तथा जब श्वेगांटाई ने उन्हें सामनेर की प्रवज्ञा दी थी तो उनको ऊ कुशल नाम दिया गया था। सयादो ने कहा, महान गृहस्थ शिष्य, यह नाम आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यही नाम आप एक भिक्षु के रूप में भी लेंगे। चूंकि मैं अपनी पूर्व प्रवज्ञा के समय का भिक्षु नाम स्मरण नहीं कर सका, तो सयादा ने थोड़ी देर विचार कर कहा, चूंकि आपका जन्म शनिवार को हुआ था, मैं आपको अश्विन तेजिंद नाम दूंगा। शुक्रवार 18 जून 1965 को गृहस्थ शिष्यों का एक समूह धम्म सभागार में 9 बजे के बाद सयादा के अभिवादन के लिए एकत्रित हुआ। एक प्रवचन देने के बाद वेबू सयादा ने उपसंपदा समारोह की तैयारी की। जैसा कि मेरी पिछली प्रवज्ञा के अवसर पर हुआ था, विहार को दान देने वाले गांव के पुरुषों ने भावी भिक्षुओं को अपने कंधों पर पालकी में बिठाकर विहार की सीमा की परिक्रमा की। उस जुलूस में पुरुषों के पीछे ताड़ के पत्ते एवं पुष्प लिए हुए महिलाएं आईं। नगाड़े तथा अन्य वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। इसके पश्चात सयाजी ऊबाखे ने 50 से अधिक भिक्षुओं तथा सामनेरों को भोजन दान प्रस्तुत करवाया। लगभग 1 बजे सयाजी ऊबाखे और मुझे, जबकि हम दोनों अभी भी सामनेर थे, स्थानीय संघ के साथ उपसंपदा समारोह में भाग लेने के लिए तिलोक सब्बयू पगोडा के समक्ष सीमा कक्ष अर्थात उपसंपदा सभागार में जाना पड़ा। जब वेबू सयादा आए तो हम उनके अधीन भिक्षु बने। हम अपराह्न 2:06 पर भिक्षु बने। चूंकि प्रातःकाल से ही आकाश बादलों से घिरा था, दिन का समय निर्धारित करने के लिए व्यक्ति की छाया को माप पाना संभव नहीं था। यहाँ हम बता दें कि घड़ी के अनुसार समय अंकित करने के अतिरिक्त सूर्य की छाया मापकर समय निर्धारित करने की परंपरागत विधि भी उपसंपदा में यथासंभव प्रयोग की जाती है। तो ऊ को ले आगे लिखते हैं, तीनों लोकों के ज्ञाता सर्वज्ञ बुद्ध की कृपा से बौद्ध संवत 2509 बर्मी पंचांग में 1327 के नयो माह अर्थात ज्येष्ठ या जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गुरुवार के दिन अपराह्न में 2:06 पर इंजिंगबिंग बिहार के सयौदा के अंतर्गत कुल मिलाकर 18 कम्मवा विशेषज्ञों एवं योग्य संघ भिक्षुओं के समक्ष हमें उपसंपदा प्राप्त हुई। आचार्य कुशल तथा आचार्य तेजिंद सामनेर के निम्न स्तर से उठकर भिक्षु पद के उदात्त स्तर पर पहुंच गए। भिक्षु हो जाने पर 4 बजे हम विहार के उस अनुभाग के भवन से जो गृहस्थ लोगों के लिए आरक्षित है निकलकर विहार के उस अनुभाग के भवन में चले गए जो भिक्षुओं के लिए आरक्षित है। इस भवन को यहाँ ओम मिंगला चाऊ अर्थात विपत्ति पर विजय प्राप्त करने हेतु शुभ विहार कहा जाता था। इसे मार्केट स्ट्रीट संडो क्वार्टर मोइया निवासी ऊ ओंग दो इन तथा उनके परिवार ने दान दिया था। इस नवनिर्मित भवन की संरचना 1 मंजिला थी तथा ऊ कुशल एवं ऊ तेजिंद उसमें रहने वाले प्रथम भिक्षु थे। चूंकि उसमें जल की व्यवस्था थी अतः हमारे लिए एक फ्लश अर्थात प्रक्षालित शौचालय तथा स्नान कक्ष भी था। हमारे लिए वहाँ बिजली भी थी। सयाजी ऊबाखी अर्थात ऊ कुशल प्रवेश द्वार के निकट तथा मैं पीछे स्नान कक्ष के निकट था। ऊ लातुन हमारे भवन के पीछे एक छोटी सी ध्यान कुटी में रुके थे। हमारा प्रातःकालीन भोजन वहाँ तैयार करते थे। सायं 5 बजे अन्य सभी भिक्षुओं के साथ हम त्रिपिटक ग्रंथालय में सयादों को प्रणाम करने गए। उसके बाद 6 बजे सायं हम सयादों के दर्शन के लिए उनके निवास पर गए तथा सयाजी ऊबाखे ने जो वस्तुएं दान दी थीं वे इस प्रकार हैं। पिटक ग्रंथों का एक संग्रह, 5 भिक्षुओं के लिए चीवर के सेट, 5 छाते, 5 जोड़ी चप्पलें तथा 5 कंबल। शनिवार 19 जून 1965 भिक्षु के रूप में हमारा पहला दिन था। हमने उसी समय सारणी का अनुसरण किया जो अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र इयामिया रोड यंगोन में साधना शिविरों के समय प्रयोग होती है। मैं प्रातः 4 बजे से पहले सोकर उठा। मुझे पता नहीं कि कितनी देर पहले ही सयाजी ऊबाखे उठ गए थे। मैंने उन्हें अपनी शैया पर पालथी मारकर बैठे हुए ध्यान लगाते पाया। प्रातःकालीन भोजन के उपरांत जो विविध अवयवों के साथ मिश्रित चावल था हमने अपने विहार में ही ध्यान लगाना जारी रखा। तब सयाजी ऊबाखे एक नन्हे बोधि वृक्ष को पानी देने चले गए तथा उन्होंने उदान एवं पठान का पाठ किया। उन्होंने बोधि धातु को जागृत किया। 11 बजे दोपहर का भोजन करने के पश्चात हमने अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र की ही समय सारणी के अनुसार अपना ध्यान लगाना जारी रखा। सायं 5 बजे से 9 बजे तक हम चंक्रमण अर्थात एक छोटे से पथ पर चक्कर लगाकर व्यायाम करते और तब सयादा के दर्शन के लिए जाते थे। हम उनका अभिवादन करते तथा उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। 9 से 11 बजे तक हम ध्यान लगाते और तब बिस्तर में चले जाते। हम इस कार्यक्रम का प्रतिदिन पालन करते तथा मुझे विश्वास है कि जब मैं पहली बार वहाँ था उसकी अपेक्षा इस बार मैं भिक्षुओं के नियमों के पालन में अधिक परिपूर्ण था। सयाजी, उबाखी अत्यधिक समय बोधि वृक्ष की छाया में अथवा अपने विहार में उदान की गाथाओं पठान से उद्देश्य तथा निर्देश पठान पुच्छावारो तथा महासमय सूत्र का पाठ करने में बिताते थे। 20 जून 1965 एक रविवार को हम भोर में नाश्ते के बाद विहार की सीमा पर टहलने के लिए गए। हमने वहाँ आदरणीय बेबूसे यादव को चंक्रमण करते हुए पाया। वे अपने हाथ में एक झाड़ू लिए हुए थे और जब भी वे कोई कूड़ा देखते तो उसे वे झाड़ू से साफ कर देते थे। वे विशेष रूप से फूलों से भरे वृक्षों के नीचे की जमीन पर झाड़ू लगाते जो मुरझाए फूलों से ढकी थी। लगभग 7:20 पर सयादव हम लोगों के भवन में आए। विहार के चारों ओर गृहस्थ लोग झाड़ू लगा रहे थे। सयादव हमारे विहार में आए और जब तक हमने उनका अभिवादन किया तब तक वहाँ खड़े रहे। पहले उन्होंने कोई बात नहीं की। उनकी आँखों ने कक्ष में चारों ओर देखा, तब उन्होंने हमें देखा। उन्होंने पूछा, आप लोगों के लिए सब कुछ ठीक है ना? क्या आप प्रज्ञा विकसित कर रहे हैं? सयाजी उबाखी ने कहा कि वे सयादा की जन्मस्थली पर एक पगोडा के निर्माण के लिए 300 चैट तथा बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध आसन की मरम्मत के लिए 200 चैट दान देना चाहते हैं। सयाजी उबाखी ने यह भी कहा कि वे विहार के लिए फूलों वाले वृक्ष भेजेंगे। बेबू सयादा ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, फिर विदा ली। संयोग से हमारे आगमन के समय ही सयादा की जन्मस्थली पर एक पगोडा के निर्माण की तैयारी का शुभारंभ हो गया था। यह इंजिंगबिंग गांव में था। यदि कोई विहार के मुख्य द्वार के सामने से मार्ग का अनुसरण करे तो वह थोड़ी देर में इंजिंगबिंग पहुंच जाता है। सयादा के परिवार के घर का पूर्व स्थल गांव के उत्तर में सीमा पर चार दीवारी के सामने है। वहीं पर सयादा के लिए श्वेचेतो चेती का निर्माण किया गया। यहां हम बता दें कि बर्मी भाषा में श्वे का अर्थ स्वर्णिम होता है तथा चेतो उस स्थान को इंगित करता है जहां नाभिरज्जु अर्थात गर्भनाल या नाड़ा दफन होता है यानी गाड़ा जाता है, अतः जन्म स्थान। सयादा ने साधना केंद्र के परिसर में 3 बोधि वृक्ष लगवाए थे। उत्तर पश्चिम कोने में एक पहले से ही बहुत बड़ा हो गया था, अन्य 2 बाद में लगाए गए थे। सयाजी उबाखी ने दान दिया जिससे कि इन दोनों वृक्षों के अंतर्गत चार दीवारियों एवं बुद्ध आसनों का अभिसंस्कार यानी मरम्मत की जा सके। सोमवार 22 जून 1965 को सयाजी उबाखी उन भिक्षुओं को प्रणाम करने गए जो जब भी सयादा अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र यंगोन आते थे तो वे उनके साथ होते थे। उस दिन प्रातः 3 बजे सयादा कुछ भिक्षुओं के साथ उस स्थान पर गए जहां नए पगोडा का निर्माण किया जाना था। उन्होंने परित का पाठ किया तथा उस स्थान को एक स्तंभ द्वारा चिन्हित किया। अपराह्न में ग्रामवासियों ने भिक्खु उसुमन के मार्गदर्शन में उस भूमि को पगोडा की नींव के लिए साफ किया। 24 जून को 8:15 से 9 बजे के बाद तक हमें सयादा के साथ अकेले में कुछ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ था। सयाजी उबाखी ने सयादा को बताया कि हम दूसरे दिन चीवर उतारेंगे तथा वापस यंगोन जाएंगे क्योंकि अपने शिष्यों के प्रति, विशेषकर विदेशी शिष्यों के प्रति उनके उत्तरदायित्व पूरे करने थे। शाहजी उबाखी ने कहा कि ध्यान सिखाने के लिए यदि अवसर प्राप्त हुआ तो उनकी योजना विदेश जाने की थी। उन्होंने सयादों से अनुरोध किया कि वे विदेशों में बौद्ध शिक्षा के प्रसार के विषय में उन्हें परामर्श दें। सयादों ने इस अनुरोध का पालन किया तथा जिन पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उनकी व्याख्या की। तब मैंने सयादों को बताया कि जब मैं पहली बार भिक्षु बना था तो कैसे मैंने आनापान का अभ्यास प्रारंभ किया था तथा पहले श्वे जेदी सयादो तत्पश्चात सयाजी उबाखी के अंतर्गत कैसे मैंने ध्यान लगाना जारी रखा। मैंने आगे कहा, किंतु आदरणीय महोदय, एक बात है जो मेरे लिए स्पष्ट नहीं है। अब तक मैं कई वर्षों से ध्यान के इस क्षेत्र में कड़ा परिश्रम कर रहा हूँ, किंतु यदि मैं अन्य लोगों के चित्त से अपने चित्त की तुलना करूं तो मैं बहुत विकसित नहीं हो पाया हूं। मैं सोचता हूं कि क्या मुझ में कोई पारमी है। मैं जो कहना चाहता था उसे सयादा ने ध्यान से सुना और तब उत्तर दिया, आप में पारमी हैं और वे कुछ कम नहीं हैं, आप में अनेक पारमी हैं। गांव के तीन चार लोग जो बाहर झाड़ू लगा रहे थे उनकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, इन अन्य लोगों को देखिए, इनकी पारमी बहुत कम है किंतु आपकी अनेक हैं। अब आप चारों ओर से सुंदर बगीचों से घिरे एक बड़े पक्के मकान में रहते हैं, और उस मकान की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आप पहले रहते थे, वह आपका नहीं था। मेरा आशय उस मकान से है और बगीचे से है जिसमें आप अब रह रहे हैं। आपके पास वृक्ष तथा फुलवारी हैं, आप अनेक वस्तुओं के स्वामी हैं, इन लोगों के पास वह सब नहीं है। यदि आप भगवान बुद्ध की शिक्षा को सुने तथा उनका पालन करें तो आपकी जो भी आकांक्षा होगी आप उसे प्राप्त करेंगे। उस समय मेरे पास सयादा के शब्दों के विषय में सोचने के लिए अधिक समय नहीं था, क्योंकि हमें सभी भिक्षुओं, सामनेरों तथा थीलशिनों अर्थात शीलशिनों के लिए सयाजी उबाखी जो दान देने जा रहे थे उसकी व्यवस्था करनी थी। यहाँ हम बता दें कि थेरवादी बौद्ध धर्म में महिलाओं की उपसंपदा की परंपरा लुप्त हो गई है तथा प्रमुख बर्मी भिक्षुओं के मतानुसार इसे पुनः केवल एक बुद्ध द्वारा ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इस कारण जो महिलाएं बर्मा में धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहती हैं वे विशेष रंग के वस्त्र में सिर मुंडित कराकर ऐसे किसी समुदाय में रहती हैं जहां वे 8 शिक्षा पदों अथवा 10 शिक्षा पदों का पालन करती हैं। इन्हें शील शिन, पाली में सील शिन, बर्मी में थील शिन अर्थात नैतिक शिक्षा पदों की सम्मानपूर्वक पालनकर्ता नाम से जाना जाता है। तो उकोले आगे लिखते हैं, पहले हम सयादा के लिए भोजन ले गए तथा उनको प्रस्तुत किया। तत्पश्चात बिहार के अन्य निवासियों को भोजन प्रस्तुत किया। जब दोपहर के भोजन के बाद मैं लौटा तब जाकर विचार करने लगा कि संभवतः यह सयादा को कैसे ज्ञात हो सकता है कि अब मैं ही अपने भवन और बाग का स्वामी हूँ। वे मांडले विश्वविद्यालय के परिसर में मेरे घर आए थे। मैंने उन्हें मेमियो स्थानांतरण के विषय में बताया था किंतु और कुछ नहीं। मेरी परिस्थिति की तुलना गांव के लोगों के साथ करके तथा यह कहकर कि मेरे भीतर अच्छी पारमिताएं थीं, सयादा मुझे क्या बताना चाहते थे। विश्राम के पश्चात मैं अपने बिस्तर पर ध्यान में बैठा। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि दूसरे कमरे में सयाजी उबाखी पालथी मारकर पठान का पाठ कर रहे थे। उनके सिर के पीछे मैं बेबू सयादा का आवास देख सकता था। तब मैं समझ गया कि सयादा ने मुझे यह बताना चाहा था कि मैं न केवल सयाजी उबाखी तथा स्वयं उनके जैसे प्रख्यात पार्वी वाले व्यक्तियों की ओर देखूं, अपितु अपनी तुलना कम पार्मी वालों से भी करूं, जिससे यह देख सकूं कि मैं पहले से ही कितना आगे आ चुका हूं। यही कारण है कि उन्होंने परिसर में झाड़ू लगा रहे उन ग्रामीणों की ओर इंगित किया था। सायंकाल हम अन्य भिक्षुओं के साथ वेबू सयादा को अंतिम बार नमन करने के लिए वापस गए। उसके बाद सयाजी उबाखी बोधि वृक्ष को पानी देने गए। तत्पश्चात उन्होंने 9 बजे तक उदान का पाठ किया। 28 जून को भोर के भोजन के पश्चात हम सयादा की उपस्थिति में गृहस्थ पद के निचले स्तर पर वापस आ गए। हमने उलातुन की सहायता से अपने सामानों को ठीक किया तथा कमरों की सफाई की। तत्पश्चात हमने उसुमन तथा अन्य भिक्षुओं का जो वहाँ थे अभिवादन किया और इंजिंगविन वन आश्रय स्थल से प्रस्थान किया। हम खियू में अपने चित्रों को लेने के लिए रुके, जिन्हें वहाँ के एक स्टूडियो के एक फोटोग्राफर यानी छायाकार ने कुछ ही दिन पहले खींचा था। वहाँ से हम श्वेबो गए, जहाँ हम कॉफ़ी व जलपान के लिए उपेतिन के घर पर रुके। तत्पश्चात हम श्वेबो के बाहर बेबू सयादा के विहार में प्रणाम करने तथा दृश्यावलोकन करने गए। वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम 11 बजे कौमुदा पगोडा पहुँचे। हमने 2 बार पगोडा की परिक्रमा की तथा फूल तेल के दीप एवं अगरबत्ती अर्पित की। वापस सगाई में हमने विश्राम किया और मेरी सालियों यानी मेरी पत्नी की बहनों के घर दोपहर का भोजन किया। हम सीधे मेमियो नहीं अपितु चाउ से गए। हम नगर के बाहर बेबू विहार पहुँचे। जब सयाजी उबाखी ने एक पहाड़ी के शिखर पर बेबू सयादा के निवास को प्रणाम किया, तब धीरे धीरे वर्षा प्रारंभ हो गई। इस झींसी वाली हल्की फुहार में हम वापस घाटी में उतरे और उस स्थान पर गए जहाँ 24 वर्ष पूर्व सयाजी उबाखी ने सयादों को नमन किया था। जब सयाजी उबाखी ने जाकर पगोडा बोध वृक्ष एवं निवास को नमन किया, तब और अधिक भारी बारिश प्रारंभ हो गई। इसके पश्चात हम शिनसालू नामक भिक्षु को प्रणाम करने गए। जब भी मैं चाउसे विहार गया था तो प्रत्येक बार मैं आदरणीय शिनसालू के दर्शन के लिए गया था। वे एक असाधारण आत्मसंवरणवान भिक्षु हैं तथा ध्यान के अभ्यास में दृढ़ हैं। वही एक भिक्षु हैं जो सयादा की भर्त्सना सुनने के पश्चात भी सीमा में रुके रहे तथा चुपचाप रात भर ध्यान मग्न रहे। जब आदरणीय बेबू सयादा अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र यंगोन के धम्मयोंग ची चेती आए थे, तो सयाजी उबाखी ने शिनसालू का उनके प्रयासों के लिए सम्मान किया था तथा उनका विशेष ध्यान दिया था। जब हम शिनसालू सयादा को नमन कर बाहर आए तो बारिश हो गई थी और सूरज फिर से निकल कर आ रहे थे। बादल बिखर गए तथा मौसम सुखद एवं रमणीक हो गया। जब हम मांडले पहुँचे तो सूर्य शानदार ढंग से चमक रहे थे। सयाजी उबाखी को एक डायरी अर्थात दैनंदिनी रखने की आदत थी। उसमें वे इस अवधि का, जिसमें वे जीवन में केवल उसी समय दुर्लभ भिक्षु पाली में दुर्लभ भिक्षु बनने में सक्षम हुए थे, सविस्तार विवरण देते हैं। मैं इंजिंगविंग के समय के इतने विवरण इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सयाजी उबाखी की वे टिप्पणियाँ उपलब्ध थीं। 6 जुलाई के अंतर्गत दैनंदिनी में एक प्रविष्टि है जिसका शीर्षक है वेबू स्यादा के अभिवादन तथा पूजन के लिए श्वेबो जनपद के खियू बस्ती में इंजिंग विंग वन विहार की यात्रा। इस प्रविष्टि का लेख उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था जो इस प्रकार है। जब मैं स्यादा की उपस्थिति में आया तो मैंने उनका पूजन किया, न केवल सामग्रियों के उपहार से अपितु संघ में प्रवेश कर भिक्षुओं की उत्कृष्ट विनय नियमावली का पालन कर तथा इस उदात्त धम्म में ध्यान के अभ्यास द्वारा भी मैंने उनका सत्कार किया। जिस दान को देने का अभ्यास मैंने किया वह दान पारमी का अभ्यास था जिसे इस जीवन में मैंने पहले कभी नहीं किया था। चूंकि यह एसोसिएशन अर्थात संगठन एवं सभी शिष्य भी इस दान में भागीदार थे, गृहस्थ जीवन में प्रत्यावर्तित होने के पश्चात मैं स्यादा के समक्ष गया और उनकी उपस्थिति में तथा उनकी मेत्ता आशीर्वाद के साथ मैंने इस पुण्य का आवंटन किया। कुशल कर्म। यहाँ हम चैट के मूल्य के संबंध में बता दें कि 1965 में किसी मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 3.15 चैट प्रतिदिन होती थी। सयाजी आगे लिखते हैं, दान कुशल अर्थात उदारता के माध्यम से पुण्य। इंजिंगबिंग पगोडा के लिए 300 चैट, बोधि वृक्ष की दीवारों के लिए 200 चैट, काउ मुदा पगोडा के लिए 20 चैट, बर्मी में 3 त्रिपिटक संग्रह 684 चैट, 3-3 चीवरों के 2 समूह 190 चैट, 2-2 चीवरों के 3 समूह 240 चैट, 5 छाते 40 चैट, 6 जोड़ी चप्पलें 96 चैट, 2 चर्म आसन 10 चैट, 2 कटोरे छननी इत्यादि 37 चैट, 1 उस्तरा 13 चैट, मोमबत्तियां एवं अगरबत्तियां 20 चैट, 1 बड़ी मंजूषिका भर मिठाइयों का 1 बड़ा डब्बा 32 चैट, 2 दिन का भोजन दान 18 जून 1965 300 चैट, 27 जून 1965 500 चैट, कुल 2442 चैट। टिप्पणी, खाद्य के लिए लागत में विपसना एसोसिएशन से 220 चैट सम्मिलित हैं। इन सामग्रियों के अतिरिक्त मेरे भारतीय शिष्यों द्वारा आम, मैंगोस्टीन यह भी एक प्रकार का फल होता है तथा नमकीन जलपान प्रस्तुत किए गए थे। शील कुशल। पाली में शील कुशल अर्थात सदाचार के माध्यम से पुण्य। एक उदात्त भिक्षु जीवन में प्रवेश करने के पश्चात मैंने निष्ठा एवं सम्मान के साथ आचार संहिता की 227 नियमावलियों का पालन किया। मैंने विशेष प्रयास किया कि आचरण के गौण नियमों का भी उल्लंघन न हो। इस जीवन काल में इस उच्च प्रकार के शील के अभ्यास का अवसर केवल भिक्षु पद के उन 10 दिनों के समय ही मिला था। भावना कुशल अर्थात चित्त के विकास के माध्यम से पुण्य। जब भी मैं बुद्ध, धम्म एवं संघ के प्रति अपने कर्तव्यों से निवृत्त होता था तो मैं अपने मस्तिष्क को धम्म के प्रति निर्देशित करता था तथा इस प्रकार पटिपत्ति अर्थात शिक्षाओं को व्यवहार में डालकर अभ्यास के द्वारा यानी ध्यान साधना द्वारा मैंने अपना आदर प्रकट किया। दैनिक कार्यक्रम। प्रातःकालीन भोजन के पश्चात मैं बोधि वृक्ष को जल देता तथा तब उसकी छाया में उदान का अर्थात 3 चरणों में बुद्ध की जागृति का पाठ करता। यहाँ हम बता दें कि बोधि वृक्ष के नीचे मुक्त के आनंद में 7 दिनों तक विभोर रहने के पश्चात बुद्ध ने उदान उद्घोषित किया था जिसकी 3 प्रारंभिक गाथाएं हैं। इनमें से एक एक गाथा रात के तीन पहरों में से प्रत्येक पहर के अंत में उद्घोषित की गई थी। ये सुत्तपिटक के खुद्दक निकाय में उपलब्ध हैं। सयाजी उबाखी आगे लिखते हैं, अपने आवास में वापस आकर मैं पठान से उद्देश्य एवं निर्देश का पाठ करता था, अर्थात अभिधम पिटक के पठान पाली से पच्चय उद्देश्य एवं पच्चय निर्देश का पाठ। दोपहर को मैं पठान पुच्छावारो पच्यानुलोम का पाठ कर आराधना करता, अपराह्न 4 बजे मैं महासमय सूत्र का पाठ कर साथ ही साथ अन्य 6 सूत्रों का जिनका महासमय प्रशिक्षण दिया गया था पाठ कर पूजा करता। सायं 9 बजे से पहले मैं बोध वृक्ष के नीचे अनेक जाति संसारा तथा अन्य उदान गाथाओं का पाठ कर ठीक 9 बजे तक वहीं ध्यान में बना रहता। यहाँ हम बता दें कि महासमय सूत्र दीघ निकाय का 20वां सूत्र है। हिंदी में भिक्षु राहुल सांकृत्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा अनुदित गौतम बुक सेंटर द्वारा 2010 में प्रकाशित सुत्तपिटक का दीघ निकाय उपलब्ध है। महासमय पर जिन 6 सूत्रों का उपदेश दिया गया था वे इस प्रकार हैं। 1. सम्मा परिभाजनीय सूत्र, जो सुत्त निपात चूलबग 13 पृष्ठ 90-94 है। 2. पुराभेद सूत्र, जो सुत्त निपात अठक बग 10 पृष्ठ 226 से 229 है। 3. कलह विवाद सूत्र, जो सुत्त निपात अठक बग 11 पृष्ठ 228 से 233 है। 4. चूल वियूह सूत्र, जो सुत्त निपात अठक बग 12 पृष्ठ 232 से 237 है। 5. महाव्यूह सूत्र, जो सुत्त निपात अठक बग 13 पृष्ठ 236 से 241 है, तथा तुवटक सूत्र, जो सुत्त निपात अठक बग 14 पृष्ठ 240 से 245 है। ऊपर की पृष्ठ संख्याएं डॉक्टर भिक्षु धर्मरक्षित द्वारा संपादित एवं अनुदित मोतीलाल बनारसी दास वाराणसी द्वारा 1983 में प्रकाशित सूत्र निपात की हैं। इन पर एक चर्चा के लिए सयाजी उचितिन द्वारा महासमय धम्मदान श्रृंखला 9 बुद्धिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ में पुनर्मुद्रित सयाजी उबाखी मेमोरियल ट्रस्ट यूके द्वारा प्रकाशित पृष्ठ 240 से 260 देख सकते हैं। अनेक जाति संसारा धम्मपद की 153-154 संख्या की गाथाएं हैं। सयाजी उबाखी ने आगे लिखा, जो भी दान कुशल शील कुशल भावना कुशल मैंने संपादित किया तथा साथ ही साथ जो भी पुण्य मैंने बुद्ध धम्म एवं संघ की पूजा अर्चना द्वारा अर्जित किया उसे मैं सभी ब्रह्माओं देवताओं तथा मनुष्यों में आवंटित करता हूँ, जो मेरी पारमिताओं की पूर्ति में मेरी सहायता करते हैं, विशेष रूप से प्रतिपदा शासन पाली में पटिपत्ति शासन अर्थात प्रशिक्षण के प्रसार में सहायता का उत्तरदायित्व लेने वाले विपस्सना एसोसिएशन यानी संगठन के लोगों में, सभी मन एवं शरीर से प्रसन्न हों, वे मार्गपद पाली में मग्गपद एवं फलपद से संबंधित ज्ञान से भर जाएं, वे जागृति अर्थात बोधि को प्राप्त करें जिसकी उन्हें आकांक्षा है। सयाजी उबाखी सभापति विपस्सना एसोसिएशन 31A इयामियाए रोड 6 जुलाई 1965। सयाजी उचितिन द्वारा टिप्पणी क, उन दिनों सयाजी उबाखी यंगॉन म्यांमार बुद्ध शासन काउंसिल अर्थात बौद्ध प्रशिक्षण परिषद की पटिपत्ति सब कमेटी अर्थात प्रतिपदा उपसमिति के अध्यक्ष थे। उन्हें देश के साधना केंद्रों से संबंधित मुद्दों को निपटाने का काम सौंपा गया था। परिषद को इन केंद्रों से प्राप्त विवरणों में लिखा था कि एक बड़ी संख्या में लोग मग पद तथा फल पद के विजेता हो गए थे, किशोर बालिकाओं से लेकर वृद्ध व्यक्तियों तक। कार्यकारी समिति में 27 सदस्य सम्मिलित थे, जो देश भर से गणमान्य धार्मिक व्यक्ति थे। उनमें से अधिकांश अति शिक्षित अथवा पाली के लोकप्रिय विद्वान थे। वे सभी चिंतित थे कि संभव है कि इन केंद्रों में कुछ गलत हो रहा हो, किंतु उनकी आलोचना का उनमें साहस नहीं था, क्योंकि धम्म के विरुद्ध कुछ भी कहना अत्यधिक हानिकारक होता। समस्या के समाधान के लिए कार्यकारी समिति ने संबंधित समस्त कागज पत्र सयाजी उबाखी की अध्यक्षता वाली पटिपत्ति मामलों की उप समिति को हस्तांतरित करवा दिया। यह सब 1953 में हुआ। सयाजी उबाखी को एक ऐसा समाधान निकालना था जिससे किसी को भी निराश न होना पड़े। उन्होंने बर्मी भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं का मूलभूत अध्ययन और उनके सही उपयोग शीर्षक वाली एक पुस्तिका लिखी तथा उसे उप समिति को तत्पश्चात कार्यकारी समिति को प्रस्तुत किया। इसे देश के सभी साधना केंद्रों में उनकी प्रतिक्रिया के लिए वितरित करने का एक संकल्प पारित किया गया। किसी भी केंद्र से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, उनसे भी नहीं जिन्होंने मग पदों एवं फल पदों के विजेताओं की सूचियां भेजी थी। उसके बाद कोई भी ऐसी सूची नहीं भेजी गई। सयाजी उबाखी ने बर्मा रेलवे के लेखा उपनियंत्रक उबोले के माध्यम से, जिनकी माँ वेबू सयाजा के गृहस्थ समर्थकों में से एक थी, अपनी मुद्रित पुस्तिका वेबू सयाजा को अलग से भेजी। एक पूर्व कर्नल उमामा उबोले के अनुज हैं। उमामा ने 1984 में सयामा जी के साथ साधना की थी तथा अब अधिकांश समय अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र यंगोन में ही रहते हैं। ख सयाजी उबाखी तथा उनके निकटतम शिष्यों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सयाजी उबाखी के निमंत्रण को सयाजा स्वीकार करेंगे। एक रात जब शिक्षण तथा सामूहिक ध्यान के लिए बैठकों का दिन भर का कार्य समाप्त हो गया तो सयाजी उबाखी एक विचार से प्रेरित हुए। अतः उन्होंने सयामा जी तथा सयाजी उचित्तिन को पगोडा की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए कहा। सयाजी उबाखी ने सयामा जी को निर्देश दिया कि वे स्वयं को तैयार करें और तब उन्होंने वेबू सयाजा को मानसिक रूप से आमंत्रित किया। सयाजी उबाखी तथा सयामा जी पगोडा से बाहर आए और सयाजी उबाखी ने केंद्र के विपस्सना एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष उबोंशे को अगले दिन मांडले के लिए उड़ान भरने का निर्देश दिया। वहां से उन्हें वेबू सयाजा को एक औपचारिक निमंत्रण देने के लिए कार से आगे चाउसे वेबूचों जाना था। इस घटना को म्यांमार के प्रथम राष्ट्रपति साओश्वेताई समेत सयाजी उबाखी के अनेक शिष्यों ने स्मरण किया। बाद में साओश्वेताई से उस यंगोन समिति की अध्यक्षता करने का निवेदन किया गया, जो अगले वर्ष से प्रारंभ कर वेबू सयाजा को निचले म्यांमार की वार्षिक यात्राओं के लिए आमंत्रित करती थी। उन्होंने बताया कि जब उन्हें सयाजा से व्यक्तिगत रूप से दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ था तो कैसे उन्होंने सयाजा से पूछा था, क्या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मानसिक रूप से आमंत्रित कर सकता है। साओश्वेताई ने यह सुना था। सयाजी उबाखी ने बेबू स्यादा को मानसिक रूप से आमंत्रित किया था तथा स्यादा ने अपनी सहमति दी थी और तब औपचारिक रूप से आमंत्रित करने के लिए ऊ बो शेह को भेजा गया था। बेबू स्यादा ने तत्काल उत्तर दिया, गृहस्थ शिष्य, यदि पवित्रता है तो एक निश्चित स्तर पर ऐसा हो सकता है। आदरणीय बेबू स्यादा के केंद्र पर आ जाने के पश्चात सयाजी उबाखी ने साओ श्वेताई को स्यादा का अभिवादन करने के लिए आमंत्रित किया। साओ श्वेताई एक रात्रि भोज समारोह में जाते समय लगभग 7 बजे आए। उन्होंने स्यादा से पूछा कि क्या वे एवं सयाजी उबाखी एक ही बात का प्रशिक्षण देते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या उन्हें सयाजी उबाखी के अंतर्गत ध्यान लगाना चाहिए तथा स्यादा ने कहा कि हाँ, उन्हें लगाना चाहिए। साओ श्वेताई ने तत्काल सयाजी उबाखी से प्रशिक्षण का अनुरोध किया, अतः उन दोनों ने स्यादा से अनुमति ली तथा पगोडा में चले गए। सयाजी उबाखी ने साओ श्वेताई के लिए दक्षिण की कोशिका निर्धारित की, वह कोशिका जिसमें एक वर्ष पश्चात बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई। तब सयाजी उबाखी ने उन्हें आनापान ध्यान लगाना सिखाया। साओ श्वेताई ने कहा था कि उनके पास रात्रि भोज समारोह में सम्मिलित होने के पहले मात्र 1 घंटे का समय था, किंतु वे ध्यान में 2 घंटे तक बैठे रहे। सयाजी उबाखी ने 2 घंटे के बाद कोशिका एवं पगोडा के केंद्रीय मूर्ति कक्ष के बीच का द्वार जब खोला, तब साओ श्वेताई ने अपने नेत्र खोले। वे आश्चर्यचकित थे कि वे इतने लंबे समय तक ध्यानमग्न रहे। अब उनको रात्रि भोज समारोह के लिए देर हो चुकी थी, किंतु वे ध्यान से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद से दक्षिणी कोशिका वृद्ध पुरुषों को दी जाने लगी। ग, सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र यंगोन पर वापस लौटकर सयाजी उबाखी अपने अनुभवों का वर्णन करते थे। जब उन्होंने सयाजी उचितिन को बेबू स्यादा के विहार में हुई एक असाधारण घटना के विषय में बताया तो वहां कोई और नहीं था। यह संभव है कि माँ श्यामा जी रही हों। 17 जून 1965 उनके आगमन के दिन देर अपराह्न में जब उलातुन सयाजी उबाखी का मुंडन कर रहे थे तो सहसा स्यादा आ गए। सयाजी उबाखी के समक्ष अपनी एड़ियों पर बैठ गए तथा मुंडन करने से जो केश नीचे गिरे थे उन्हें उठाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कुछ केशों को एकत्र किया तथा लेकर वापस चले गए। सयाजी उबाखी इससे अचंभित थे तथा उन्होंने उलातुन से कुछ केशों को एक खाली प्लास्टिक की दवा की शीशी में बचाकर रखने के लिए कहा, जिसे सयाजी उबाखी अपने साथ यंगोन वापस ले आए। वे इस शीशी को सदैव अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र के पगोडा में बुद्ध की प्रतिमा के पीछे रखते थे। जब श्यामा जी तथा सयाजी उचितिन म्यांमार से बाहर आए तो वे इनमें से आधे केशों को अपने साथ ले आए, जिससे कि उन केशों को सम्मानित एवं पूजित किया जा सके। अब वे केश बहुजन हिताय विश्वभर में निर्मित धम योंगची चेतियों में निहित हैं। घ, अब जबकि भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया था तो भवन परिसर की सफाई तथा मुख्य प्रवेश द्वार तक के लिए एक पगडंडी बनाना आवश्यक हो गया। यद्यपि संध्या समय देर हो चुकी थी तथापि श्रद्धेय बेबू स्यादा ने कुछ गृहस्थ शिष्यों को परिसर की सफाई तथा उस पगडंडी को बनाने के लिए एकत्रित किया। भवन का मुख्य प्रवेश द्वार परिसर के मध्य में था तथा पगडंडी सीधे आदरणीय वेबुसेहदा के विहार की ओर जाती थी। इस पथ को मिंग लै मा अर्थात राजमार्ग का नाम दिया गया। उलातुन वहां मुख्य मार्ग पर कार्यरत व्यक्तियों की सहायता कर रहे थे, किंतु उन्होंने सोचा कि पार्श्व पगडंडियां जो भवन के निर्माण के समय मजदूरों एवं व्यवसायियों द्वारा प्रयोग में लाई गई थी वे एक रात के लिए काम आ जाएंगी। सयाजी उबाखी ने उन्हें ऊंचे स्वर में अपने विचार व्यक्त करते हुए सुन लिया तथा कुछ प्रश्नों के साथ उन्हें डांटने का निर्णय लिया। उन्होंने पूछा, ब्रह्मा एवं देवता कैसे विहार पर आएंगे? क्या वे पार्श्व मार्गों से आएंगे अथवा राजमार्ग से? उलातुन ने उत्तर दिया, आदरणीय महोदय, वे राजमार्ग से आएंगे। सयाजी उबाखी ने कहा, हाँ, जैसे एक राजा मिंग लै मा यानी राजमार्ग पकड़ेगा, उसी प्रकार भिक्षुओं एवं सामनेरों को भी पकड़ना होगा। जो भी करना है उसे तत्काल करना पड़ेगा। व्यर्थ करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। इसे ठीक से सहकर्मियों के साथ सामंजस्य एवं सद्भाव से किया जाना चाहिए। हम यहाँ बता दें कि इस संबंध में दी सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ऑर्डिनेशन इन द ट्रेडिशन ऑफ सयाजी उबाखिन 1988-1989 धम्मदान सीरीज 11 पेज 84 देखा जा सकता है। अंग बर्मी संबत 1313 यानी सन 1951 के बुद्ध दिवस के अवसर पर अर्थात वैशाख पूर्णिमा 20 मई को सयाजी उबाखी ने त्रिपिटक से कुछ उद्धरणों को चुना तथा एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवाया। ये उद्धरण थे उदान, पटिच्च समुपाद, उद्देश, निर्देश, अठ जय मंगल गाथा अर्थात आठों विजय का उत्सव मनाती धम्मपद की गाथा संख्या 153 एवं 154। यह पुस्तिका धम्मलेट सौ अर्थात धम्मदान यानी धम्म शिक्षण के उपहार स्वरूप मुद्रित की गई थी। महालेखाकार कार्यालय के बुद्ध शासन अचूसा अति ने इसे निःशुल्क वितरित किया। आदरणीय लेडी सयादा के अनुसार यदि इन धम्मोपदेशों को कंठस्थ कर लिया जाए तथा उनका प्रतिदिन जीवन पर्यंत पाठ किया जाए तो शरीर एक धम्म चेत के सदृश बन जाता है तथा मनुष्य एवं देवता ऐसे पाठ करने वाले व्यक्ति की वंदना अर्चना कर पुण्य अर्जित करेंगे। सयाजी उबाखी ने सत्य निष्ठा के साथ यह घोषित किया था कि केंद्रित मन से आस्थावान हृदय के साथ बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त करने की कल्पना करते हुए इन गाथाओं का पाठ करने से यह संभव है कि बोधि धातु जागृत हो जाए। इस पुस्तिका में उदान और निर्देश के अंत में लेडी सयादा के शब्दों के उद्धरण के रूप में एक टिप्पणी भी जोड़ी गई थी। च शुक्रवार 18 जून 1965 को भिक्षु बनने के पश्चात सयाजी उबाखी को पता चला कि सयादा अपने जन्मस्थान पर एक पगोडा का निर्माण करवाना चाहते थे जो कि साधना केंद्र से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर में है। सयाजी उबाखी ने बताया कि वे मध्य रात्रि में उठकर उसी रात को किसी की निद्रा भंग किए बिना विहार के पूर्वी द्वार से बाहर निकले। अतः न तो ऊको लेको और न ही उलातुन को पता चला कि वे भावी पगोडा के निर्माण स्थल पर गए हैं और ठीक उसी स्थान पर बैठकर जहां सयादा का पगोडा बनना था ध्यान लगाया। तत्पश्चात उन्होंने परित एवं पठान का पाठ किया और अपने आवास पर लौट आए। चूंकि मैं अर्थात सयाजी चितिन उनके कार्यालय में कार्य प्रारंभ करने के पश्चात से ही सयाजी उबाखी के निकट आ गया था, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन संवितरण के लिए उत्तरदायी अधिकारी के माध्यम से मैं अवगत हुआ था कि सयाजी उबाखी प्रत्येक माह की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 10 शिक्षा पदों का पालन करते थे तथा वे अपने वेतन को स्वयं हाथ नहीं लगाते थे। अतः वह अधिकारी उनका वेतन सीधे सयाजी उबाखी के परिवार को दे देता था, जिससे सयाजी उबाखी को पैसा हाथ न लगाना पड़े। वेतन का उनके परिवार में सीधे चले जाने का एक कारण यह था कि उनके 8 बच्चे थे जिनका उन्हें पालन करना था। उनकी 9 संतानें हुई होती, किंतु प्रथम बालिका की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। सयाजी उबाखी ने एक साथ 3 या 4 पृथक पृथक पदभार संभाले, 3 पद 3 वर्षों के लिए तथा 4 पद 1 वर्ष के लिए। ये सभी पद विभागाध्यक्ष के स्तर के थे। प्रत्येक पद का वेतन 1600 चैट हुआ होता, किंतु सयाजी उबाखी को मात्र 1 पद अर्थात वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक पद से ही वेतन लेने की अनुमति दी गई थी। अन्य सभी पद केवल मानद थे। यह अनुच्छेद उनकी नियुक्ति के आदेश में जोड़ा गया था, अन्यथा देश के मौलिक नियमों के अंतर्गत प्रत्येक अतिरिक्त पद के लिए वे 300 चैट लेने के अधिकारी थे। उनकी नियुक्ति के आदेश के इस अनुच्छेद ने उनके अतिरिक्त वेतन का अधिकार छीन लिया था, क्योंकि यदि उन्हें प्रतिमाह 1900 चैट मिलता तो उनके तात्कालिक वरिष्ठ महालेखाकार, जिनकी नियुक्ति एक सांसदीय अधिनियम के अनुसार हुई थी और जिनका वेतन केवल 1800 चैट था, तो उनके वेतन की तुलना में सयाजी उबाखी का वेतन अधिक हो जाता। बाद में जब सयाजी उबाखी विशेष कार्य प्रभारी अधिकारी के रूप में महालेखाकार के कार्यालय में थे, तो उन्होंने महालेखाकार के वेतन में वृद्धि कर उसे 2500 चैट प्रतिमाह कराने के लिए एक अति सराहनीय तर्क पत्र तैयार किया। इसे स्वीकृति मिली तथा अधिनियम संशोधित हुआ। उसके पश्चात सयाजी उबाखी अपने सभी अतिरिक्त पदों में से केवल 1 के लिए 1 अतिरिक्त 300 चैट का वेतन ले सकते थे। इस अतिरिक्त राशि का उपयोग वे अपने व्यक्तिगत व्यय के लिए करते थे। अपने इस अतिरिक्त वेतन में से संचित धन से वे अपने कुशल कार्यों के रूप में दान देते थे।